आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज के अखबार, आज के अखबार।
हेलो नमस्कार, ये हैं आज के अखबार। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। तारीख आज 27 अप्रैल है और मेरे साथ जमशेद कमर सिद्दीकी हैं। हम दोनों सुबह सुबह अखबार टटोल रहे थे और जैसा कि होता है सबसे पहले देश के अखबारों का हाल आपको देते हैं। तो बताइए जमशेद।
गुड मॉर्निंग नितिन, और गुड मॉर्निंग उन सभी लोगों को जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर जो बड़ी खबर है वो पंजाब और हरियाणा को लेकर है। इसमें बताया है कि पंजाब में एक ऑक्सीजन हॉस्पिटल प्लांट है जो काम कर रहा है और हरियाणा में 6 हैं जिनमें से एक भी काम नहीं कर रहा है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में बताया है कि पंजाब में रोज़ की जो ज़रूरी खपत है कोविड पेशेंट्स के लिए वो 200 मीट्रिक टन की है और इसके अलावा 50 मीट्रिक टन जो खपत है वो ज़रूरत है नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए, लेकिन इसमें से अवेलेबिलिटी सिर्फ 165 मीट्रिक टन की हो रही है और 85 मीट्रिक टन अभी भी कम है। ये उम्मीद की जा रही है कि 300 मीट्रिक टन जो है वो आने वाले 2 हफ्ते में मैसर हो जाएगा। ये विशाव भारती और सुशील मानव की रिपोर्ट है ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सेंटर ने अनाउंस किया था 3 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए पंजाब में पिछले साल, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही इंस्टॉल हो पाया। सेंटर ने 162 प्लांट्स लगाने की बात कही थी पीएम केयर फंड से और उसमें से 3 जो प्लांट्स थे वो पंजाब में इंस्टॉल किए जाने थे, जिनमें से एक फरीदकोट में था, एक पटियाला में था और तीसरा अमृतसर में था। लेकिन सिर्फ फरीदकोट का जो ऑक्सीजन प्लांट था सिर्फ वही काम कर पाया। तो ये काफ़ी कुछ बताता है सरकारों के बारे में, उनके काम करने के तरीकों के बारे में और साथ में संजीदगी को लेकर, देश में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो संजीदगी है उसको लेकर ये काफ़ी कुछ बताता है।
जी जमशेद, मेरे पास दैनिक जागरण है और इसकी हेडलाइन है, कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार, मद्रास हाईकोर्ट। तो ये बेहद तल्ख टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आई है और कल पूरा दिन इस टिप्पणी को लेकर बात होती रही। हमारे न्यूज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन में भी हमने इसे काफ़ी विस्तार से कवर किया है कि क्यों कोर्ट ने टिप्पणी की, क्या कारण रहा। और अखबार में लिखा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए बोला है कि आयोग के अफसरों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अदालत ने मौखिक चेतावनी दी है कि वो 2 मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएगी।
दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर जो हेडलाइन है, यानी केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों से दवा की कीमत को घटाने की गुजारिश की है। ये दोनों कंपनियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपना नया मसौदा सरकार को भेजे। सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में वैक्सीन की कीमतों को लेकर एक लंबी बैठक चली जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसमें सरकार ने कंपनियों से कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए वो अपनी वैक्सीन की कीमतों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएँ। ये पिछले 4 दिनों के भीतर जो वैक्सीन की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो बैठक थी, दूसरी बैठक थी और उसमें केंद्र सरकार ने अपने वैक्सीन खरीदने की वजह से जो राज्यों पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उसके प्रति भी संवेदनशीलता जताई और कहा कि समय आने पर राज्यों की मदद करने का विकल्प भी खुला हुआ है।
हिंदुस्तान टाइम्स है और इसमें लिखा है कि इन कॉल मोदी एंड बाइडेन डिस्कस कोविड सप्लाईज। तो कोरोना के चलते जैसी बदहाली भारत झेल रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को कहा है कि वो भारत को हर तरह का जो संभव सहयोग होगा वो देंगे। वेंटिलेटर्स देनी हो चाहे वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना हो, अमेरिका इसमें पीछे नहीं हटेगा। तो दोनों ही नेताओं ने फ़ोन पर आपस में बात की है और कैसे सहयोग को बढ़ाया जाए इस पर दोनों ने चर्चा की है और पीएम मोदी ने कहा है कि जो बाइडेन के साथ मेरी बातचीत हुई और स्मूथ और एफिशिएंट सप्लाई चेन कैसे बन सके वैक्सीन के रॉ मटेरियल को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, इस पर हम दोनों ने काफ़ी बातचीत की है। तो इस तरह से माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी राहत भारत को मिलने वाली है।
अगली खबर जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स से है, जहां मैं देख रहा हूं कि इस पर हेडिंग है कि कोविड रियलिटी टचेस आईपीएल पैरेलल यूनिवर्स एज फाइव प्लेयर्स विड्रॉ, यानी पांच खिलाड़ियों ने आईपीएल से विड्रॉ कर लिया और वो इस पैंडेमिक के दौर में उन्होंने खेलना उन्हें मुनासिब नहीं लगता। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस साल आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला किया है। अश्विन ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया था और वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद का मैच खत्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा कि मैं कल से इस साल के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और मैं उसका साथ देना चाहता हूं। मैं वापस आकर खेलने की कोशिश करूंगा, अगर सब सही होता है तो धन्यवाद। नवभारत टाइम्स के पहले पेज पर दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, राहुल आनंद की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कोरोना की रफ्तार जो है वो दिल्ली में पाँच दिनों से एक समान है। यानी जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इन्फेक्शन रेट 31 से 32% या इससे जो नीचे जो बना हुआ है वो दिखाता है कि महामारी अपने पीक पर है, लेकिन रफ्तार जो है वो कम है और ये एक तरह से राहत के संकेत हैं। तो दो हफ्ते जो इन्फेक्शन रेट था वो इसी तरह से स्थिर रहा, समान रहा, तो यहाँ से अब कोरोना ढलान पर दिखेगा। सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं जुगल किशोर, उन्होंने कहा है कि इससे कुछ राहत के आसार बन रहे हैं और कुछ दिल्ली का जो ग्राफ है वो नीचे आएगा। यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें कुछ डेटा दिया गया है और बताया गया है कि पाँच दिनों से बीमारी की जो रफ्तार है वो एक समान है। 24 अप्रैल को 24,103 मरीजों की संख्या थी और इन्फेक्शन रेट जो था वो 32.27% का था। 23 अप्रैल को ये 24,331 संख्या थी मरीजों की और इन्फेक्शन रेट भी 32.43 था। 22 अप्रैल और 21 अप्रैल और 20 अप्रैल इन तीनों में 26, 24 और 28 हज़ार के आसपास मरीजों की संख्या थी और इन्फेक्शन रेट जो था वो 36 से 32% तक था। तो इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये महामारी अगले दो हफ्ते में अपने ढलान पर आ सकती है, ये खुशखबरी की बात है। लेकिन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन की डॉक्टर हैं नंदिनी शर्मा, उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं वो 10 से 14 दिन पुराने हैं, इसलिए कम से कम दो हफ्ते नज़र ज़रूर रखनी होगी। जो अभी संक्रमित होंगे वो दो हफ्ते में सामने आएगा और उसके बाद ही ये सही आकलन हो पाएगा।
जी जमशेद, विदेशी अखबारों में क्या है ये बताइए।
जी नितिन, तो अगर इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो अमेरिका ऑनलाइन पर मैंने देखा कि यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि वो एस्ट्राजेनेका को 60 मिलियन डोजेस को दूसरे देशों में तकसीम करेगा, उन्हें बांटेगा। ये अमेरिका जो है वो 60 मिलियन डोजेस एस्ट्राजेनेका की दूसरे देशों में भेजेगा और ऐसा व्हाइट हाउस के ज़रिए ये स्टेटमेंट आया है। बहुत सारे सेफ्टी रिव्यू हैं जिनके बाद ये एक्सपोर्ट शुरू होगा, जो आने वाले कई महीनों में पूरा हो पाएगा। हालांकि इसको लेकर तमाम क्रिटिक्स ने सरकार पर वैक्सीन रखने का आरोप भी लगाया है, एक ऐसे वक्त में जब तमाम देशों में इसकी ज़रूरत है। अमेरिका में ऐसी वैक्सीन का स्टॉक बहुत बड़ी मात्रा में है जो कि अभी रेगुलेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए ऑथराइज नहीं किया गया है। आपको ये भी याद होगा कि पिछले महीने जो बाइडन ने मैक्सिको और कैनेडा के साथ 4 मिलियन डोज शेयर करने की बात कही थी। और इसके अलावा जो खबर है वो वॉशिंगटन पोस्ट से है जो अमेरिका के बारे में है, और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आया है जो नए सेंसस से इसकी फाइंडिंग हुई है। और वहाँ पे ये बताया गया है कि जो अमेरिका की आबादी है वहाँ पर उसमें बहुत ही स्लो पॉपुलेशन रेट के ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और ये कहा गया है कि अमेरिका की जो आबादी है वो इतिहास में दूसरी सबसे स्लो पेस के साथ बढ़ रही है। कुछ आंकड़े भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि 1920 में ये जो दर थी वो 15% की थी, 1940 में ये 7.3 हुई और 1970 में ये थोड़ी बढ़ी जहाँ पर ये 13.3 हो गई, 1990 में 9.8 हो गई, 2010 में ये फिर कम होना शुरू हुई 9.7 और 2020 में यानी पिछले साल ये घटकर 7.4 हो गई। तो फिलहाल आज का अखबार में इतना ही, शुक्रिया नितिन।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।